मैं इसको इस तरह से सोचता हूं, मान लीजिए एक परिवार है और वो अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहा है और उसने बहुत धूमधाम से सारी तैयारी की है, उसने बहुत लोगों को आमंत्रित किया है, घर को अच्छा सजाया है, अच्छा भोजन तैयार किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है और मेहमान जब आना शुरू हो गए, उपहार ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं और मेहमानों ने लाकर उन सारे उपहारों को मिला के रख दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद पूछते हैं जो मेहमान आए हैं उस परिवार में जिस बच्चे का जन्मदिन है कि भाई आपका बच्चा तो दिखाई नहीं दे रहा, कहां है? और तब माता पिता कहते हैं वो बच्चा जो है अपने नाना नानी या दादा दादी के यहां रहा है, बच्चा नहीं है वहां, बच्चा कहीं और है, लेकिन वो उसका जन्मदिन मना रहे हैं। और मेरे प्रियो, कितनी बार हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को ऐसा ही मनाते हैं, हम सब कुछ तैयारी करते हैं, घरों को सजाते हैं, मित्रों को कार्ड बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो विशेष व्यक्ति है वो व्यक्ति कहीं और रहता है और बिना उसके प्रभु यीशु मसीह को जन्म को मनाना अपने आप को तसल्ली देना तो होता है लेकिन उसको महिमा देना नहीं होता। और परमेश्वर जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया वो एकदम से हम उसके जन्म को नहीं देखते। आज सुबह मैं आपको पुराने नियम से लेकर चलना चाहूंगा क्योंकि हम हमेशा अधिकतर मत्ती और लूका पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि चार सुसमाचार में ये मरकुस सुसमाचार पहले लिखा गया, लेकिन मत्ती को उन चारों क्रम में पहले रखा गया क्योंकि मत्ती और मलाकी ये जो है एक ब्रिज के समान है, मत्ती नए नियम में एक ब्रिज के समान है। मत्ती सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन करता है, मरकुस बिल्कुल नहीं वर्णन करता, लूका फिर प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन करता है, मत्ती के जन्म का वर्णन करना अलग तरीके से है, लूका के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म वर्णन होता है वो अलग तरीके से है, लेकिन यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के जन्म को बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही गहराई से छूता है लेकिन उसके जन्म की घटनाओं के बारे में वर्णन नहीं करता। उसके देह धारण के बारे में तो बात करता है लेकिन जन्म की घटनाओं के बारे में बात नहीं करता। पर जब मत्ती के सुसमाचार में आते हैं और मत्ती के सुसमाचार को खोलते ही साथ पहले अध्याय के पहले पद से लेकर जो आरंभिक 14-15 पद हैं उनमें जो पीढ़ियों के बारे में है उसमें एक विशेष पाई जाती है। हम वहां पर आने से पहले हम पीछे जाना चाहेंगे। ये सच है हमारा परमेश्वर योजना बनाकर चलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। और दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय उसके 20 पद में पौलुस परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 20 पद, और जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के द्वारा की गई हैं वो हां और आमीन के साथ हैं। जितनी प्रतिज्ञाएं आरंभ से लेकर, सो पहली बात परमेश्वर योजना को बनाने कर चलने वाला परमेश्वर है, दूसरी बात परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तीसरी बात परमेश्वर की बुद्धि और युक्ति को हम नहीं समझ उस अनंत सीमा तक नहीं समझ सकते। हमारी विजडम हमारी बुद्धि जो है या हमारी योजना जो है वो लिमिटेड है, सीमित है। परमेश्वर जो असीमित परमेश्वर है, जिसके पास असीमित बुद्धि है, उसकी योजना और उसकी बुद्धि को हम कभी भी नहीं समझ सकते। इसीलिए पौलुस कहता है रोमियो उसके 11 अध्याय में उसके 33 पद से, उसकी बुद्धि उसके ज्ञान क्या अगम है, उसके भेद को कौन समझ सकता है, मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य के समान है। और जो आज हम बड़ा दिन यह त्यौहार को यीशु के जन्म को मनाते हैं ये केवल आज से 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल 2013 चल रहा है इस समय, केवल यीशु ने जन्म ले लिया और ये घटना हो गई, नहीं, उससे आदि से अनंत से परमेश्वर की सनातन योजना थी। और आज हम थोड़ा क्रम से उत्पत्ति की पुस्तक से आगे बढ़ा करके मत्ती तक आना चाहेंगे को ध्यान रखते हुए, यदि हम पूरा जाएं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जल्दी से कि किस प्रकार से मत्ती की पुस्तक में हम उस योजना को स्पष्ट रूप से सामने देखते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर की एक बहुत ही गहरी इच्छा थी, मनोकामना थी, एक अभिलाषा थी, और वो अभिलाषा थी कि इस सृष्टि की रचना के बाद मानव प्राणी जिसको मनुष्य को संरचा, वो मनुष्य परमेश्वर के साथ सहभागिता का आनंद उठा सके, परमेश्वर के साथ संगति करे। और हम सब कुछ उस बार को जानते हैं कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की। हम लोग यहां पर अधिकतर लोग विश्वासी लोग हैं कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की, कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को रचा। उस घटना को भी आप जानते हैं, क्या घटना हो गई, किस प्रकार से मनुष्य के बीच में पाप उत्पन्न हुआ। लेकिन आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय। चिरपरिचित पद है, हमने कई बार इसको पढ़ा है, यहां तक प्रचार किया है, विचार किया है, फिर भी हम इस पर देखना चाहेंगे। और तीसरे अध्याय में जब यह कुछ हो गया, जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की एक वेदना पुकार उठी, तूने ये क्या किया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने दो बार ये शब्द कहा है, तूने ये क्या किया। एक बार उसने शब्द जब कहा जब आदम हवा पाप में गिरे, अर्थात उनका आत्मिक पतन हुआ, तब परमेश्वर ने कहा है कि तूने ये क्या किया। और दूसरी बात परमेश्वर ने कैन और हाबिल के संबंध में कहा, अगर आप चौथा अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ेंगे, तब वो कहता है और उसने कहा तूने ये क्या किया। दूसरा, जब मनुष्य का सारिक और संसारिक पतन होता है, नैतिक पतन होता है, आत्मिक पतन के साथ नैतिक पतन जुड़ा हुआ है, जब हत्या की गई, सो दो बार परमेश्वर के मुख से दुख के साथ, एक पीड़ा के साथ ये निकला, तूने ये क्या किया है। पर जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर योजना बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मनुष्य पर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अपनी योजना को अपनी समझ और अपने तरीके से पूरा करने वाला परमेश्वर है, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के समझ, मनुष्य की ज्ञान से कहीं वो परे है, और ऐसा परमेश्वर उन सारी परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लेकर चल रहा है। क्योंकि यद्यपि मनुष्य से त्रुटि और गलती बहुत हुई है, मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिया है, लेकिन परमेश्वर की मंशा यह है कि मनुष्य परमेश्वर की समीपता में, निकटता में रहे। ये उस सृष्टि के समय से लेकर अनंत काल के लिए उसकी मंशा थी और है। और तब हम 14 पद में आप जानते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने सर्प से कहा, लेकिन 15 पद में, तीसरा उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 पद, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पर हम सबसे पहले इस बात को पाते हैं, पहला सुसमाचार, पहली प्रतिज्ञा और पहला न्याय, ये तीन बातें इस पद के अंदर पाते हैं। पहला सुसमाचार, फर्स्ट गॉस्पल, पहली प्रतिज्ञा, फर्स्ट प्रॉमिस, और पहला न्याय, फर्स्ट जजमेंट, इस 15 पद में पाते हैं। और तब हम कहते हैं परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये जो सुसमाचार था मनुष्य के छुटकारे का, ये सुसमाचार था परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा का कि जो मनुष्य को पूरा अपनी नति में ले आएगा, वो प्रतिज्ञा, और मनुष्य का प्रति न्याय जो परमेश्वर का पाप करने के कारण था कि वो अनंत काल के लिए पाप का नाश किया जाएगा। अनंत न्याय जो है ना केवल मनुष्य पापी होने के कारण, लेकिन वो जिसने पाप के अंदर में मनुष्य को ले गया उसके ऊपर भी ये अनंत न्याय का। सो तीन बातें इस पद में हम देखते हैं। अब इस वचन को लेकर परमेश्वर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, इस वचन को लेकर परमेश्वर अपने आप को बढ़ा रहा है। और हम पूरे पुराने नियम में जितने भी हम देखते हैं और कुछ पदों को हम देखेंगे, हम देखते हैं क्रम से किस तरह से परमेश्वर आगे बढ़ रहा है। मनुष्य गलती कर रहा है, मनुष्य अपराध कर रहा है, मनुष्य त्रुटि कर रहा है, मनुष्य अपनी समझ का सहारा ले रहा है, मनुष्य अपनी योजना को बनाकर चलना चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसके आगे होकर चल के अपनी योजना को पूरा कर रहा है। सो हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है, उसने सृष्टि अपने हाथों से की है, उसने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया है, इसलिए उसका कंसर्न, उसकी चिंता अपनी सृष्टि पर है, उसका प्रेम, और इसलिए वो मनुष्य से आगे बढ़कर होकर चला है। तो जब हम यहां पर देखते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, किस रीति से अब्राहम की बुलाहट हुई, और अब्राहम की बुलाहट होते हुए, और एक बात को आगे बढ़ते हुए मैं और कहना चाहूंगा, जब हम मत्ती की पुस्तक में आते हैं, फिर से वापस आऊंगा, मत्ती की पुस्तक में आते हैं, चार मुख्य बातें पूरे इसमें, पूरे मत्ती उत्पत्ति से लेकर मत्ती की में जब आप आते हैं, चार बातें। पहली चीज, स्त्री के वंश से बालक का उत्पन्न होना। हिंदी में वंश शब्द आया है, लेकिन हिंदी में इंग्लिश में सीड शब्द आया है। दूसरा, अब्राहम के वंश से उत्पत्ति, उसके 22 अध्याय उसके 8 पद में, 18 पद में है। तीसरा, यहूदा के गोत्र से, जेनेसिस उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 10 पद है। और चौथी बात, दाऊद के घराने से। ये पूरे पीरियड में, ये जो पूरा काल है पुराने नियम का, इस पूरे काल में ये चार मुख्य चीजें हैं जिसमें होकर परमेश्वर उस यीशु को संसार में लाने के लिए इस क्रम में होकर चल रहे हैं। स्त्री के वंश से 3:15, अब्राहम के वंश से उत्पत्ति 22:18, यहूदा के गोत्र से, इसको हम देखेंगे अभी, यह 49:10, और दाऊद के घराने से, उसको भी हम देखेंगे। अब यह पर हम आगे बढ़ते हैं। अब परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को करा, और उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम उत्पन्न हुआ, इब्राहिम की किस प्रकार से आगे पीढ़ी चली, और तब आगे चल करके याकूब का जीवन एक महत्वपूर्ण आता है, और याकूब के 12 पुत्र हुए जिनसे 12 गोत्र आरंभ हुए, और इस गोत्र में परमेश्वर ने एक गोत्र को अद्भुत रीति से प्रतिज्ञा दी और उसको एक विशेष कार्य के लिए चुन लिया। आइए मेरे साथ निकालिए जेनेसिस चैप्टर 49, उत्पत्ति उसका 49 अध्याय, और यहां पर अब याकूब बूढ़ा हो गया है और उसने अपने बेटों को बुलाया है और उनको आपने कहा तुम इकट्ठे हो जाओ, और अब उनको वो आशीष दे रहा है, और हरेक को आशीष देते हुए उसने यहूदा को आशीष दी है, और यहूदा को क्या कह रहा है, 8 पद से पढ़ रहा हूं, जेनेसिस चैप्टर 49:8, पत्ती 49 8 पद से मैं पढ़ रहा हूं। हे यहूदा, तेरा भाई तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है, यहां पर उसको संबोधित कर रहा है सिंह का बच्चा, लेकिन आगे चल के देखिए कैसे वो क्या कह रहा है। हे मेरे पुत्र, तू शिकार करके ऊपर चढ़ गया। यहूदा को कह रहा है तू सिंह का तो बच्चा है, लेकिन तू शिकार करके ऊपर को चढ़ गया, वो सिंह के समान दबकर बैठ गया, ना कि ऊपर चढ़ गया लेकिन दबकर बैठ गया, और शेरनी को छेड़ने का दुस्साहस कौन करेगा। कह रहा है याकूब मृत्यु की स्थिति में है। इससे पहले यहूदा से एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। जब हम उत्पत्ति उसके 38 अध्याय को देखते हैं, जहां पर यहूदा का के जीवन की सारी कहानी दिखाई देती है, और ऐसा अपराध जिसके लिए परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञा थी लेव व्यवस्था में कि किसी भी प्रकार से कोई भी अपनी बहू के साथ अनैतिक संबंध ना करे। यहूदा का की पत्नी मर चुकी थी, और जब उसका बेटा था, बड़ा बेटा था, 3 बेटे थे, बेटा था बड़ा बेटे को उसने कनानी अन्य जाति स्त्री से उसने ब्याह लिया। कुछ दिन बाद यहूदा का बेटा मर गया। जब उसका दूसरा बेटा था तो यहूदा ने अपने इस बहू का विवाह दूसरे बेटे से करा दिया, लेकिन जब दूसरे बेटे ने कुछ अनर्थ किया, जाके जेनेसिस 38:39 अध्याय को पढ़ेगा, परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने उसकी मृत्यु कर दी। अब यहूदा के पास तीसरा एक बेटा था। यहूदा घबरा गया, क्या लगा अगर मैं इसकी शादी से, वो सोचने लगा कि ये तामार जो है, उसकी बहू का नाम तामार था, ये तामार किसी प्रकार से एक ऐसी स्त्री जो कनान से शादी हो गई, शायद परमेश्वर का कोप इसके कारण मेरे खानदान पे आ गया है, अब मेरा खानदान आगे नहीं बढ़ने पाएगा। और तब उसने कहा कि جو تیسرا بچہ ہے میں اس کو لڑکا اس کو میں بچا کے رکھوں گا اور جب اس کو بڑا ہوگا تو میں اس کی وواہ دوسری طرح سے کروں گا. لیکن یہ بہو جو تامار تھی وہ تیار تھی اس سے وواہ کرنے پرتیچھا کرنے کے لیے, پر یہودا نہیں مانا. اور تب ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا, اور تب جا کر کے اس تامار کو تامار جانتی تھی, تامار آنے جاتی ہو کر اب یہودا کے پرمیشور جو اسرائیل کا پرمیشور ہے اس پر وہ وشواس کرنے لگی تھی. جب ہم جب متی کی پستک میں آتے ہیں چار استریوں کا وہاں پر ورنن ہے, ونش جو ہے پورش سے چلتے ہیں لیکن چار استریوں کا ورنن ہے جن کو ونش میں جوڑا گیا. کیوں؟ اس میں سب سے پہلا استری تامار, اور اسی لیے میں نے کہا میں ہم پرانے نیم سے جا کر وہاں پر پہنچنا چاہیں گے. اور تب تامار نے بھیش بدلا, اور بھیش بدلنے کے بعد وہ ایک گفا میں چلی گئی, اور وہاں پر ادھکتر یہودا جایا کرتا تھا, اور یہودا تامار کو پہچان نہیں پایا کہ کون ہے. تامار یہودا کی پتنی نہیں تھی, اور اس نے اس تامار کے ساتھ غلط سمبندھ کیا, اور جب ایسا کیا تو تامار نے یہودا کے کچھ سامان کو لے کر اپنے پاس رکھ لیا. کچھ سمے بعد جب تامار نے گرب دھارن کیا اور تب یہ پتا چلا یہودا کو کہ تامار گربھوتی ہوئی ہے, یہودا بہت کرودھت ہوا. اس نے کہا میری بہو نے انرتھ کام کیا, اس کو لاؤ اور پتھراؤ کر کے اس کو مار ڈالا جائے, کیونکہ پرمیشور کے وچن کے انوسار تھا. اور تب جب اس نے کہا کہ میرے پاس جو ساماگری ہے اسی کے دوارا میں گربھوتی ہوئی ہوں, اور تب وہ ساماگری دکھائی دی تو وہ یہودا کی تھی ساماگری. اور یہودا اس کے بعد بہت لجت ہوا, اس نے کہا تامار بے گناہ ہے, گناہ تو میرا ہے. یہودا نے کوئی بھی کسی پرکار سے بہانہ نہیں کیا کہ میں اس کو پہچان نہیں پایا تھا, میں اس کو یہ نہیں کر پایا تھا, لیکن اپنے اس کے گناہ کو قبول کیا اور اس کے بعد کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی اور اس پرکار کے سمبندھ نہیں رکھا. دو باتیں یہاں پر, پرمیشور نئی پرمیشور ہے, پرمیشور پکشپات نہیں کرتا ہے, پرمیشور پکشپات نہیں کرتا, اور اس لیے پرمیشور نے تامار کو گرہن کیا, اور تامار کے دوارا جو سنتان آگے اتپن ہوئی ان سنتانوں سے جو آگے بیڑی آرم ہوئی اس کو یشو کے ونش میں جوڑا گیا, جو ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے. یہ اس کے پیچھے کہانی ہے. لیکن جب یہاں شبد کہہ رہا ہے کہ یہودا کے بارے میں یعقوب کہہ رہا ہے کہ وہ شکار کر کے اوپر چڑھ گیا, وہ سی کے سامان دب کر بیٹھ گیا. جب ایک سی شکار کرتا ہے اس کے بعد چھپ کر بیٹھ جاتا ہے. اس نے اپنے جیون کو اسی پرکار سے کیا, دبک گیا تک کوئی جانے نہ پائے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے. لیکن اس تمار کے بارے میں کہ شیرنی کو چھیڑنے کا دوساہس کون کرے گا. پرمیشور کے وچنوں کو جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں ہمیں پدوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. سو یہاں پر اس کو تب اس کے بعد آگے ایک اور پرتیجا دی گئی, پرمیشور نے اس کو کرنا کی, پرمیشور نے یہودا کو شمع کیا, پرمیشور نے تامار کو شمع کیا, پرمیشور نے تامار کو اپنے راج میں یا اپنے یوجنا میں شامل کیا. اور تب یہاں پر لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا آگے چل کے دس پد میں, یہودا کے یہودا سے تب تک راج نہ چھوٹے گا اور نہ اس کے پیروں کے بیچ سے شاش کے راج دن ہٹے گا جب تک کہ شیلو نہ آ جائے اور راج راج کے لوگ اس کی آگیا مانیں گے. شیلو نہ آ جائے مطلب جب تک پیوکت راجہ نہ آ جائے. اتپتی 49 چپٹر میں ایک اپیوکت راجک شاشک کے بارے میں بھوشیہ وانی یہودا کے دوارا ہو چکی, یہودا میں کے جیون سے ہو چکی تھی جو یعقوب کرتا ہے. اور وہ اپیوکت راجا آگے چل کے متی میں ہم یشو کو دیکھتے ہیں, تھوڑا سا بھی اور آگے بڑھیں گے. جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو دیکھیں کس پرکار سے, تھوڑا سا اور آگے جائیں گے روت کی پستک میں آئیے, کس پرکار سے پرمیشور ان کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے. میں نے کہا میں تھوڑا آنے والے سنڈے میں پربھو نے چاہا تھا متی سے کچھ باتوں کو دیکھیں گے, لیکن ابھی ہم اس پربھو میں سے جانا چاہ رہے ہیں. روت کی پستک اس کا 4 ادھیائے اس کا 18 پد سے, پیرس جو ہے یہودا سے تامار کے دوارا اتپن ہوا پتر ہے. پیرس جو ہے یہودا سے تامار کے دوارا اتپن کیا ہوا پتر ہے. اب اس کے بارے میں کیا لکھا ہے 18 پس سے, پیرس کی ونشاولی اس پرکار سے ہے, پیرس سے حسرون, حسرون سے ارام, اور ارام سے امینا داب, اور امیناداب سے نہشون، اور نہشون سے سلمون، اور سلمون سے بواز، اور بواز سے عبود، اور عبید سے یشع، اور یشع اور یشع سے یہودا اتپن ہوا. اب اس ونش میں یہودا یا داؤد جڑ گیا، داؤد اتپن ہوا. پیرس سے داؤد جڑ گیا. وہاں سے उत्पत्ति 30 अध्याय पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से वंशज आगे बढ़ रहा है आदम से. और 3 अध्याय जो 15 पद है वो है कि परमेश्वर किस प्रकार से भविष्य में इन योजनाओं को पूरा करेगा, उसको आगे चल के और हम बाद में देखेंगे. लेकिन यहां पर रूथ में हम उस वंशावली को, उस प्रतिज्ञा को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं. अब यहूदा आगे बढ़ने के बाद, यहूदा के बाद पेरेस आ गया, और पेरेस के बाद दाऊद आ गया. अब दाऊद के बारे में देखेंगे थोड़ा सा. दूसरा शैमल शैमल चैप्टर 7 उसके 12 पद से. अब यहां पर परमेश्वर दाऊद से बात कर रहा है, और दाऊद नातान नबी के द्वारा यह भविष्यवाणी कह रहा है किस प्रकार से परमेश्वर अपनी उस योजना को, बीच में बहुत सारी और चीजें हैं जिनको हमने समय के अनुसार छोड़ा है, लेकिन हम धीरे धीरे खास बात सामने ला रहे हैं. यहां पर दाऊद पहुंचा है. जरूर दाऊद की मृत्यु होने वाली है, उसके बाद सुलेमान राजा बनेगा, सुलेमान मंदिर बनाएगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस मंदिर पर नहीं है. वो मंदिर श्रेष्ठ नहीं है, उसकी योजना उससे बड़ी है. जहां परमेश्वर एक बात को चाहता है, और वो पद 16 पद है जहां वो कहता है तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सर्वदा बना रहेगा, तेरा सिंहासन सर्वदा के लिए स्थिर किया जाएगा. तो उस इलेक्शन के बारे में संबोधित करते हुए कि वे जान लें कि उनके जो राज्य, उनका जो भी अधिकार है वो सीमित है, लेकिन एक और सिंहासन और राज है जो यीशु मसीह का है, जो अनंत काल का है. और ये राज और ये सिंहासन 3 चीजें हैं, तेरा घराना, तेरा राज, तेरा सिंहासन. परमेश्वर अपनी इस योजना में जो आगे चल के अपने पुत्र के द्वारा पूरा करना चाह रहा है, उस योजना में एक नया घराना बनाएगा, परमेश्वर एक नया राज की स्थापना करेगा, परमेश्वर एक ऐसी सिंहासन की स्थापना करेगा जो अनंत काल का सिंहासन होगा. उसका घराना उसकी कलीसिया है. हम अक्सर कहते हैं इस गीत को, हमें यीशु का घराना. सच ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म संसार में केवल इसलिए नहीं हुआ कि वो आकर एक और कुछ चीज को, पंथ को खड़ा कर दे, लेकिन के एक नए घराने को बनाने के लिए हुआ, एक नए राज की स्थापना करने के लिए हुआ, एक नए सिंहासन स्थापित, जिस सिंहासन जो पवित्रता और धार्मिकता का सिंहासन है, जिसके सामने हर एक व्यक्ति को खड़े होकर अपना लेखा देना होगा, और वो अनंत का राजा है, यीशु है. और ये प्रतिज्ञा मैंने आरंभ में कहा था कि परमेश्वर की सनातन से एक इच्छा और एक योजना रही कि उसने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की कि मनुष्य के साथ उस संगति कर सके. सब कुछ बीच में बहुत कुछ हुआ, एक और मनुष्य चल रहा है, अपनी योजना को ले आ रहा है, अपनी बुद्धि को लगा रहा है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, पाप में गिर रहा है, संघर्ष हो रहा है, सब कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं, दूसरी ओर परमेश्वर अपने हाथ को लेकर मनुष्य को आगे बढ़ाता और स्वयं बढ़ता चला जा रहा है, और उस योजना को पूरा कर रहा है जो उसने आदि में रखी है. मेरे प्रियो, बड़े दिन का त्योहार मनाना, बड़े दिन को समझना, हमें परमेश्वर की आनंद की योजना को समझना है, उस योजना को समझना है जो सृष्टि से पहले उसने बना रखी थी, यह समझना है. और तब यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से इन बातों कैसा है. तब जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं, कहता फिर से मैं दोहरा रहा हूं 16 पद को, तेरा घराना, तेरा राज, तेरा सिंहासन सामने सर्वदा, सर्वदा 2 बार सर्वदा शब्द आए. राज सर्वदा बना रहेगा, सिंहासन सर्वदा बना रहेगा, अनंत काल के लिए है. और ये बड़ा दिन जिसको हम मनाते हैं हमें उस राज की स्थापना के बारे में दिखाता है जो परमेश्वर का अनंत काल का राज है. हम उसके अंग हैं, हम उसके भागी हैं, और इसलिए जब हम उत्सव को मनाते हैं तो केवल ये नहीं कि साल में एक दिन आ रहा है इसलिए मना रहे हैं. ये सच है कि हम इस माध्यम से हम लोगों को साक्षी देते हैं इस माध्यम से, माफ कीजिएगा, जब हम विदेशों में जाते हैं, विदेशों में क्रिसमस दूसरी तरह से मनाया जाता है, वो फेस्टिवल फैमिली फेस्टिवल है, लेकिन हम ऐसे देश में जहां इस अवसर को बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं, आउटरीच का प्रोग्राम कर रहे हैं, नए नए गांव में जाने का योजना बना रहे हैं, नए नए लोगों को सुसमाचार पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, ताकि कई सारे लोगों को जिन्होंने परमेश्वर वचन नहीं सुना, इस क्रिसमस के समय में हम उस संदेश को पहुंचा सके। ये हमारा आनंद है, क्योंकि हम उस राज के भागी हैं जो राज सनातन का राज है, सर्वदा का राज है, जिसका राजा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। बड़ा दिन हमें इसी ओर बार बार हमें प्रेरित करता है। तब आगे चल के जब हम दाऊद के जीवन में आते हैं, अब आइए हम थोड़ा सा एक दो पद को यशायाह में देखेंगे, तब हम एकदम से उत्पत्ति उस मति में आएंगे। यशायाह में 22 प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है, और उस 22 प्रतिज्ञाओं में 22 प्रतिज्ञा हैं जिनमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उसके अधिकार के बारे में दिखाया गया है। मृत्यु के बारे में अलग है, मृत्यु के बारे में नहीं, लेकिन उसके जन्म के संबंध में, और जब वो जन्म उसका होगा उसके बाद उसके पास क्या अधिकार होंगे, क्या उसके पास प्रभुता होगी, कैसा उसका अधिकार होगा, 22 अलग अलग अध्याय में यह दिखाया गया है। लेकिन आइए 7वां अध्याय उसका 14 पद हम अक्सर पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, इमैनुअल रखेगी, इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ, अदन की वाटिका में परमेश्वर हमारे साथ। जब परमेश्वर का साथ टूटा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, मैं इस स्त्री के वंश से, यहां पर यशायाह कह रहा है एक स्त्री कुंवारी होगी, और इसीलिए परमेश्वर ने, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, परमेश्वर ने मेरी को चुनकर उसको देवी नहीं बनाया, ध्यान दीजिएगा, और शैतान ने सच्ची मसीहत के बीच में दो पैलर ऐसे चीज खड़े कर दिए, एक इस्लाम को खड़ा कर दिया और एक रोमन कैथोलिज्म को खड़ा कर दिया। हमें बहुत सावधान होना है। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को कहा था नारी के वंश, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को फिर दोहरा रहा है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पहले यशायाह के द्वारा, कि कुंवारी गर्भवती होगी और इसलिए परमेश्वर ने उस कुंवारी स्त्री को चुना जिसका नाम मरियम है। मरियम कहती है मैं तो तेरी दासी हूं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर उसको एक विशेष ओहदा देना चाहता था, नहीं, लेकिन परमेश्वर को किसी न किसी स्त्री को चुनना था, पर वो ऐसी स्त्री रही जो परमेश्वर की दृष्टि में नम्र थी, दीन थी। क्यों नम्र थी? परमेश्वर की उस बात को स्वीकार करना उसके लिए सरल नहीं था, सामाजिक रीति से, वहां के कल्चर, वहां की संस्कृति की रीति से, यहूदी जो समूह है उनके मत की रीति से सरल नहीं था, लेकिन उसने सब कुछ अब सहने के लिए अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में किया, और इसलिए परमेश्वर ने उसके कोक को इस प्रकार से उपयोग कर लिया। ये परमेश्वर की योजना थी। और तब हम देखते हैं कि वो पुत्र जन्म देगी और तू उसका नाम इमैनुअल रख, वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। ये तब एक और मैंने कहा 11, तब यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर छाया करेगा। और अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो लिखा हुआ है 5 पद में, उसका कटिबंध धार्मिकता और उसका कमरबंध सत्य होगा। बार बार हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं, लेकिन आइए मेरे साथ में जो खास लाना चाहता हूं, यशायाह उसके 49 अध्याय को, 49 चैप्टर, यशायाह उसका 49 अध्याय, 49 चैप्टर। मैंने कहा 22 अलग अलग रेफरेंसेस हैं जिसमें, लेकिन के 49 अध्याय के 2 पद को केवल देखेंगे। पूरा अध्याय अगर आप पढ़ें तो कई सारी चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन पहले 6 पद मैं पढ़ूंगा आपके सामने। वो अब यूं कहता है, ये तो एक हल्की सी बात है कि याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इसराइल के बचे हुए लोगों को लौटा ले आने के लिए लिए मेरा दास ठहरे, मैं जाति जाति के लोगों के लिए तुझे ज्योति भी ठहराऊंगा, जिससे कि मेरा उद्धार पृथ्वी के छोर छोर तक पहुंच जाए। मेरे प्रियो, मैंने आपको आरंभ में बोला था, आपके साथ शेयर करा था, बांटा था, तमार
कानानी स्त्री थी। परमेश्वर का अनुग्रह हर एक उस व्यक्ति पर है जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है। केवल इसराइलियों के लिए नहीं है, यहां पर वो कहता है वो जाति जाति कुल कुल भाषा भाषा मैं जाति जाति के लोगों के लिए तुझे ज्योति भी ठहराऊंगा। यह उसकी प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म केवल राज की स्थापना करने के लिए नहीं लेकिन जाति जाति के लोगों के लिए ज्योति ठहराने में आए। वो लोग जो अंधकार में बैठे हुए थे उन्होंने ज्योति देखी, उन्होंने प्रकाश पाया। मेरे प्रियो, पाप मनुष्य को अंधकार में ले आता है, पाप मनुष्य को बांध देता है, पाप मनुष्य को विनाश में ले आता है। अदन की बाटियों में पाप करने के कारण मनुष्य परमेश्वर के सामने दूषित हो गया था, दोषी हो गया था और पाप की मजदूरी तो मृत्यु ठहराई जा चुकी थी। परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से अलग है। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में एक अनंत जीवन है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने उस उत्पत्ति में एक सुसमाचार दे दिया था। सुसमाचार यह है कि इस वंश से और उस वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। और वो सुसमाचार आगे चलकर लिंक होता है कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और वही होगा जो लोग पाप के कारण अंधकार में पहुंच गए हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, धर्म कर्म कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, याद प्रयास कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अपनी रीति विधि के अनुसार चल रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई छुटकारे की आशा नहीं है। परंतु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो संसार में मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, जिसने ज्योति चमकाई और उस ज्योति में जो कोई भी उस ज्योति के पास आए वो अंधकार में ना रहे लेकिन प्रवेश करके उससे उस प्रकाश को प्राप्त करके अंधकार से बाहर निकल करके प्रकाश को प्राप्त करके जीवन को प्राप्त करे। यहां पर सात पद में लिखा हुआ है हे तू जो तुच्छ जाना जाता, जो जातियों की दृष्टि में घृणित और शासकों का दास है। यीशु की ओर शब्द आया है दास, दास है इसराइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है राजा तुझे देखकर उठ खड़े होंगे और शासक दंडवत करेंगे। यहोवा के कारण होगा जो विश्वास योग्य है और इसराइल के का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है, यीशु को जिस परमेश्वर ने चुन लिया है। ये परमेश्वर की योजना है। अब आइए मेरे साथ थोड़ा सा मत्ती में आखिरी में आएंगे, मत्ती में हम आएंगे, मत्ती उसके पहले अध्याय में। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं परमेश्वर जो उस बात उस पर विश्वास करता है उस पर दया करने वाला परमेश्वर है चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। अब तब यहां पर जब हम पहले पद से पढ़ते हैं वंशावली से इब्राहिम के वंशज दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक, इब्राहिम से इजाक उत्पन्न हुआ, इजाक से याकूब और याकूब से यहूदा और यहूदा उसके भाई उत्पन्न हुए तथा यहूदा और तामार से ये फेरेस जो शब्द है वो फेरेस के बारे में है और जोरा उत्पन्न हुए। फेरेस से अब तब आगे वंशावली आई है। पहला स्त्री का नाम तामार, वंशावली में पहली स्त्री तामार। दूसरा आगे जब हम देखते पांच पद में तब उसके बाद लिखा हुआ है सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। दूसरी स्त्री है राहाब। परमेश्वर कैसे अपनी योजना को पूरा कर रहा है, राहाब की कहानी सब बार बार सुनते हैं और जानते हैं। राहाब एक अन्य जाति स्त्री थी यहूदा की। जब हम सॉरी कनान में जब वे प्रवेश कर रहे थे और यहोशू की पुस्तक में आते हैं तो यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं बल्कि गिनती की पुस्तक में है कि मूसा ने 12 भेदियों को भेजा था और 2 भेदी यहोशू और कालेब जब यहां पर आए तो वो तम इसके राहब के बर पहुंचे और राहब ने कहा एक शब्द का वहां पर मैं जानती हूं तुम्हारा परमेश्वर तुमको ये देश दिलवाएगा। क्या मतलब है? वो अन्य जाति स्त्री इसराइल के परमेश्वर पर विश्वास कर रही है और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये नए नियम के पद नहीं है, ये पुराने नियम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं, आराम से उसकी योजना से जुड़े हुए हैं। और तब राहब ने कहा कि जब तुम इस देश में प्रवेश करो यहोशू में आकर आप देखते हैं छठे अध्याय में तो मेरे और मेरे घराने को बचा लेना। और तब उन्होंने कहा तू अपने घर पे एक लाल डोरी का निशान रखना और हम उस घर को देख करके तेरा कुछ हानि ना होनेंगे। और राहब बचाई गई, न केवल बचाई गई लेकिन परमेश्वर की योजना में वो जोड़ी गई और राहब वंशज में शामिल हो गई। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो किसी जाति किसी कुल से परमेश्वर बदला हो नहीं है। जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। राहब अन्य जाति थी और परमेश्वर की योजना में स्त्री थी जोड़ गई। तीसरी रूत के बारे में हम जानते हैं, रूत की पुस्तक में बार बार पढ़ते हैं। रूत नियमित तो बेथलहम को छोड़कर चली गई थी, आशा को छोड़ आशा के स्थान को छोड़कर के रोटी के स्थान को छोड़कर वहां चली गई थी। लेकिन रूत की दूसरी साथी वापिस रहेगी। पर रूत ने क्या कहा नियमित से अपनी सास से, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, तेरा परमेश्वर। नियमी मैं जान गई हूं तू वहां छोड़कर आई है, लेकिन तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, मैं उसकी अनुयायी बनूंगी, मैं उस पर विश्वास करूंगी। और इसलिए परमेश्वर ने इस अन्य जाति स्त्री रूत को अपनी इस योजना में सम्मिलित करके इस वंशावली में शामिल किया। और तीसरी जो स्त्री है उसके बारे में हम जानते हैं, जो बाद में चल के दाऊद की पत्नी बन गई, दाऊद के सुलेमान, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। यहां उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन उस स्त्री कौन सी स्त्री थी, उरिया की पत्नी, क्या नाम था उसका, बैशबा। जरूर दाऊद से गलती हुई, दाऊद ने पश्चाताप किया। आपको मालूम मैं दाऊद के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं, दाऊद को क्यों परमेश्वर ने कहा कि मेरे मन के अनुसार ये व्यक्ति है। उसके जीवन की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता यह थी उससे पाप हुआ, उससे गलती हुई। लेकिन अगर उससे कोई पाप हुआ, उससे गलती हुई, उसने पश्चाताप किया और उसे छोड़ दिया और उसके बाद दोबारा उस गलती को कभी नहीं अपने जीवन में दोहराया। इसलिए परमेश्वर ने वह दिखाया कि वो मनुष्य है, मेरे और आपके समान है। केवल परमेश्वर निष्पाप है, लेकिन हर एक मनुष्य, वो मनुष्य के अंदर पाप है। और तब ये दाऊद ने आगे चल के नीति वचन में अपने पुत्र को सिखाया था और उसने लिखा है कि जो अपने अपराध मान लेता है और उस पर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, छोड़ता। और ये दाऊद का जीवन था। और यहां पर वो स्त्री जो अन्य जाति स्त्री यहां पर दाऊद के साथ सम्मिलित हुई, वो उस वंशज में शामिल गई। सो चार स्त्रियों का नाम इस वंशज में है। कई बार हम इस पर विचार नहीं करते लेकिन बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। तब उसके बाद हम देखते हैं पांचवी स्त्री आती है यीशु के जन्म के साथ जो जुड़ी हुई है, वो मरियम है, जिसको प्रभु ने अपने लिए परमेश्वर चुन लिया। आज के संदेश से हम क्या पाना चाहते हैं, सेकंड भाग में हम बाद में जाएंगे। पहली बात, ये बड़ा दिन परमेश्वर की अनंत योजना का एक भाग है। दूसरा, बड़ा दिन मेरे और आपके लिए उद्धार के संदेश को लेकर आया है, उद्धार के संदेश को लेकर आया है। जैसे मैंने कहा आरंभ में, इसी के वंश से, अब्राहम के वंश से, यहूदा के गोत से, दाऊद के घराने से, अंत में दाऊद के घराने से हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु का जन्म हुआ। परमेश्वर की अद्भुत योजना, सुसमाचार अदन की वाटिका से मेरे और आपके लिए बांटा गया, और जो कोई इस पर सुसमाचार पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और सुसमाचार यह है, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे, जगत से, चाहे कोई भी किसी जाति का हो, उससे इतना अधिक प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे, अपने पापों से पश्चाताप करे, उसकी ओर लौट आए, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दे और उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहे, वो सचमुच में नाश ना होगा, एक आशा के साथ अनंत जीवन को पाएगा मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनंत का राजा है, सर्वदा का राज्य है। अगर विश्वास किया है, हम उस राज में शामिल हुए हैं, हम राज में शामिल हुए, उसकी प्रभुता है। लेकिन ध्यान लीजिए, जब हम उसके सिंहासन को देखते हैं, जो अनंत का सिंहासन है, जिस सिंहासन के सामने एक दिन मुझे और आपको खड़ा होना पड़ेगा, ताकि उस राजा के सामने खड़े होकर ना केवल हम उसको दंडवत करें, ना हम उसको साष्टांग प्रणाम करें, ना केवल हम उसकी प्रशंसा बड़ाई करें, लेकिन उस समय वो हमारा न्याय भी करेगा। प्रश्न यह है क्या वो हमारा राजा है? प्रश्न यह है, क्या हम उसके राज के नियमों के अनुसार आगे चल रहे हैं? प्रश्न यह है, क्या इस उत्सव को मनाते समय हमारा ध्यान है कि हमारा यीशु हमारा राजा जो उस उत्सव का श्रेष्ठ मूल पुरुष है, मूल व्यक्ति है, मूल है, वो कहीं हमारे उत्सव से बाहर तो नहीं है, हमारे आनंद में आनंद से बाहर तो नहीं है, या वो हमारा मुख्य फोकस है? हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा, हमारे सब कुछ के द्वारा हम उसको सामने रख सकते हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम परमेश्वर की इस योजना को समझते हुए उस योजना में शामिल हों, और जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जिसने जन्म लिया है, हम उसके राज के सदस्य बन सके और आगे बढ़ सके।